आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मतलब अगर 10 मिनट में ग्रोसरी दरवाजे पर ना आए ना तो लिटरली हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं।
बिल्कुल सही कहा। और ये बेचैनी मतलब अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।
हाँ, आई मीन हमने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक वेंडिंग मशीन की तरह सेट कर लिया है। स्क्रीन पर टैप किया और बस रिजल्ट तुरंत बाहर आना चाहिए।
राइट। किसी को मैसेज भेजा तो तुरंत वो ब्लू टिक चाहिए और फिर तुरंत रिप्लाई की उम्मीद होती है।
एग्जैक्टली।
और अगर वो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता ना तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि या तो सिस्टम खराब है या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं।
और सच बताऊं तो इस बेचैनी की जो जड़ है ना वो हमारे दिमाग की वायरिंग में है। आज की जेनरेशन पूरी तरह से एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंस गई है।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत संतुष्टि पाना।
हाँ, एक ऐसा लूप जहां इंतजार करना अब एक सजा की तरह लगने लगा है। टेक कंपनियों ने हमें हर चीज का लाइव ट्रैकिंग और प्रोग्रेस बार दे दिया है। वो फूड डिलीवरी ट्रिम्बा ट्रैक करना।
बिल्कुल। और उस ट्रैकिंग की आदत ने हमारी वो जहन शक्ति खत्म कर दी है जो हमें अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता को बर्दाश्त करने की ताकत देती थी।
राइट। हमें लगता है कि अगर कोई चीज अभी नहीं हो रही है तो मतलब वो शायद कभी होगी ही नहीं।
सही बात है। और इसी माइंडसेट को डीकोड करने के लिए आज की ये चर्चा बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल पे बात कर रहे हैं ना उसका नाम है द शबरी फ्रेमवर्क, डिवोशन थ्रू पर्पसफुल पेशेंस।
बहुत ही दिलचस्प लेख है ये।
बहुत ज्यादा। और मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं कि हमारा मिशन आज कोई धार्मिक विश्लेषण करना नहीं है। बल्कि हमारा मकसद है रामायण की एक बेहद शांत और अक्सर भुला दी जाने वाली घटना के जरिए आज की इस इंस्टेंट दुनिया में सच्चे धैर्य और पर्पस का मतलब खोजना।
और ये फ्रेमवर्क ना मतलब हजारों साल पुरानी एक कहानी से निकलता है लेकिन आज के करियर और रिश्तों की उलझनों का बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देता है।
तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। इस फ्रेमवर्क की असली ताकत को समझने के लिए हमें शबरी की कहानी के बैकग्राउंड को समझना होगा,
जो कि अपने आप में बहुत गहरी है। शबरी एक वनवासी महिला थी।
राइट।
वो समाज के उस वर्ग से आती थी जिन्हें उस समय की सोशल हायरार्की में आश्रमों के भीतर जाने की इजाजत तक नहीं थी।
बिल्कुल।
समाज ने उन्हें हाशिए पर रखा हुआ था।
लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं।
उस समय के महान ऋषि मतंग ऋषि ने शबरी का सोशल स्टेटस या जाति नहीं देखी। उन्होंने उनके भीतर की वो गहरी सच्चाई देखी
और उन्हें अपने आश्रम में जगह दी।
एग्जैक्टली। और जब ऋषि मतंग के अंतिम दिन आए तो उन्होंने शबरी से बस एक बात कही। उन्होंने कहा, राम आएंगे, तुम यहीं रहो और प्रतीक्षा करो।
मतलब सोचिए ना, ऋषि ने कोई गूगल कैलेंडर इनवाइट नहीं भेजा।
हाँ हाँ बिल्कुल।
कोई डेट या टाइम नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि राम कल आएंगे, अगले महीने आएंगे या 10 साल बाद आएंगे। और यहीं से शुरू होता है शबरी का वो रूटीन।
और जो इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव है वो रोज सुबह उठती थीं, जंगल जाती थीं और बेर चुनकर लाती थीं।
और सबसे दिलचस्प बात, वो हर एक बेर को खुद चखती थीं। जो कड़वा हो उसे फेंक देती थीं और जो मीठा हो उसे राम के लिए रख लेती थीं।
उन्हें बस ये पता था कि राम आएंगे, कब आएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था।
अब अगर हम आज के लॉजिकल नजरिए से देखें, कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई खास मेहमान आने वाला है और आप रोज घर साफ कर रहे हैं, रोज ताजा खाना बना रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आज शाम को आएगा या 10 साल तक नहीं आएगा।
आज के जमाने में तो ये बेवकूफी लगेगी।
वही तो। क्या ये सिर्फ एक अंधा विश्वास नहीं था? कोई बिना डेडलाइन के इतनी मेहनत कैसे कर सकता है?
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना वो ये है कि शबरी का इंतजार खाली नहीं था।
ओके।
साइकोलॉजी में दो तरह के इंतजार होते हैं। एक पैसिव वेटिंग और दूसरा एक्टिव प्रिपरेशन।
पैसिव वेटिंग मतलब जैसे बस स्टॉप पे खड़े होकर बस का इंतजार करना।
एग्जैक्टली। उस इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो बस घड़ी देख रहा है और हर मिनट उसे फ्रस्ट्रेशन दे रहा है।
राइट।
लेकिन शबरी का इंतजार एक्टिव प्रिपरेशन था। जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को रोज बेहतर कर रहा होता है ना तो खाली समय फ्रस्ट्रेशन नहीं बनता।
वाओ। मतलब अगर इंतजार बिना उद्देश्य के हो तो वो फ्रस्ट्रेशन है।
बिल्कुल। और अगर इंतजार एक तैयारी हो तो उसे डिवोशन यानी भक्ति कहते हैं।
क्या बात है। पर ये एक्टिव प्रेपरेशन आज के दौर में इतना मुश्किल क्यों लगता है?
क्योंकि हम फीडबैक लूप के गुलाम हो चुके हैं। हमें हर एक्शन का फास्ट फीडबैक चाहिए।
हाँ, अगर कुछ किया है तो उसका रिजल्ट बस स्क्रीन पर पॉपअप होना चाहिए।
सही कहा। नोट्स में इसके बड़े अच्छे आधुनिक उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी ने नई जॉब के लिए अप्लाई किया
और अगर 2 दिन में HR का रिप्लाई नहीं आया
तो दिमाग मान लेता है कि बस ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी और इंसान काम खोजना बंद कर देता है।
या फिर आजकल के डिजिटल क्रिएटर्स को ही देख लीजिए, नया कंटेंट बनाना शुरू किया और 3 महीने में वायरल नहीं हुए
तो लगता है कि एल्गोरिथम मेरे खिलाफ है, ये काम ही बेकार है।
और यही चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है, थोड़ा समय इन्वेस्ट किया और अगर फिल्मी कहानी जैसा रिजल्ट नहीं मिला
तो लोग कहते हैं कि ये वर्थ नहीं है, मूव ऑन करो।
लेकिन शबरी की कहानी में ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं था, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर राम नहीं आए तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी
या मेरी तो उम्र हो गई अब कैसे होगा, कोई सेकंड थॉट नहीं।
पर यहाँ एक सवाल है और यहाँ चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी।
जी बिल्कुल बताइए।
आज हम हर काम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI देखते हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये जरूरी नहीं है?
ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है।
मतलब अगर कोई अपना टाइम और एनर्जी लगा रहा है तो बिना गारंटी के मेहनत करना तो बर्बादी भी हो सकती है ना।
अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें ना तो ROI देखना बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जरूरी है, वो सर्वाइवल है। लेकिन दुनिया की कुछ सबसे गहरी चीजें ना ट्रांजैक्शन यानी लेन देन से नहीं चलती, वो प्योर डिवोशन से चलती हैं।
जैसे कि
सोर्स में बड़े अच्छे उदाहरण है। एक माँ जब बच्चे की परवरिश करती है तो क्या वो इमीडिएट ROI देखती है?
ऑब्वियसली नहीं।
एक सच्चा आर्टिस्ट सालों तक अपनी कला निखारता है, उसे नहीं पता कि कभी कोई बड़ा मंच मिलेगा या नहीं।
राइट।
एक किसान जमीन में बीज बोता है तो फसल कली नहीं उगाती, मौसम और बारिश का रिस्क होता है।
तो इन सब में कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं है।
एग्जैक्टली। लेकिन जब रिटर्न मिलता है ना तो वो किसी भी कैलकुलेशन से बहुत बड़ा होता है।
वाओ, गहरा काम गहरे धैर्य की मांग करता है।
बिल्कुल, जो चीजें तुरंत मिलती हैं उनकी उम्र छोटी होती है।
ये बहुत ही पावरफुल नजरिया है। लेकिन जब हम बिना गारंटी के मेहनत करते हैं ना तो अक्सर एक हीन भावना आने लगती है,
अपने रिसोर्सेस की कमी को लेकर।
हाँ, कि मेरे पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास है। शबरी की कहानी इस बैरियर को भी तोड़ती है।
बिल्कुल तोड़ती है। शबरी के पास कोई बड़ा आश्रम या सोशल स्टेटस नहीं था,
सिर्फ घना जंगल, कुछ जंगली बेर और बहुत सारा विश्वास था।
और जब राम आए तो शबरी ने उन्हें क्या दिया? झूठे बेर
जो उन्होंने खुद चखे हुए थे। आज के जमाने में तो ये बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा।
लेकिन राम ने उन्हें शाही दावतों से ज्यादा प्रेशियस माना।
तो इस सब का आज की लाइफ में क्या मतलब है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है।
मैंने देखा है आजकल लोग कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो पहले ही माफी मांगने लगते हैं।
हाँ, कि माफ करना, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है
या मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है।
सारा फोकस उस पर है जो हमारे पास नहीं है।
और क्या हम इस परफेक्शन के चक्कर में अपना बेस्ट देने से बच रहे हैं?
मैं समझी नहीं। मतलब शबरी ने झूठे बेर दिए, लेकिन जरा उनके क्वालिटी कंट्रोल को देखिए, उन्होंने हर बेर चखा था ताकि कोई कड़वा ना हो।
ऑलराइट, अल्टीमेट क्वालिटी कंट्रोल।
सादगी का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देना है।
मतलब जो आपके पास है उसे पूरी सिंसेरिटी से दो, अपनी सादगी के लिए किसी से माफी मत मांगो।
एग्जैक्टली। जो दिल से दिया जाए वो हमेशा इनफ होता है।
ये क्वालिटी कंट्रोल वाली बात तो दिमाग में छप गई है।
तो अगर हम इस पूरे दर्शन को समेटें तो सोर्स मटेरियल हमें 3 प्रैक्टिकल सिद्धांत देता है, इस शबरी फ्रेमवर्क के 3 पिलर्स।
चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है पर्पसफुल वेटिंग।
हाँ, मतलब अगर किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं दिख रहे तो भी रोज कुछ करते रहें।
हर दिन एक बेर चुने, प्रोग्रेस चाहे छोटी हो पर रुकनी नहीं चाहिए।
बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत है डिटैचमेंट फ्रॉम टाइमलाइन।
टाइमलाइन से खुद को आजाद करना। शबरी ने कोई डेडलाइन नहीं बनाई थी।
रामायण ये तय था, पर कब आएंगे ये उनके हाथ में नहीं था। हमारा फोकस सिर्फ एफर्ट पर होना चाहिए, टाइमलाइन पर नहीं।
राइट। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उनका स्ट्रेस लेने का क्या फायदा। और तीसरा पॉइंट है गिव योर बेस्ट विदाउट अपॉलॉजी।
मतलब बिना माफी मांगे अपना सर्वश्रेष्ठ देना।
जो भी रिसोर्सेस पास है उसी में टॉप क्वालिटी का काम देना, जैसे हर बेर को चख कर चुनना।
यही चीज आपके काम का स्टैंडर्ड सेट करती है।
अगर हम इस पूरी कहानी को देखें ना तो इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई वॉर या पॉलिटिक्स नहीं है।
सही कहा, रामायण का यह सबसे पवित्र क्षण एक बेहद शांत जीवन से निकल कर आया है।
ये शबरी फ्रेमवर्क एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी कहानियां अक्सर सबसे शांत जीवन में रची जाती हैं।
बिल्कुल, जहां शोर नहीं होता, बस सच्चाई होती है।
तो चलिए इस डीप डाइव को रैप अप करते हैं।
लेकिन रैप अप करने से पहले एक फाइनल थॉट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा।
हाँ बिल्कुल, बताइए।
इस पूरी चर्चा में हमने खुद को शबरी की जगह रखकर देखा, जो इंतजार कर रही है और मेहनत कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम किसी और की कहानी में राम की भूमिका में हो?
ओ वाओ, मतलब
क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा है, कोई जूनियर, परिवार का सदस्य या कोई दोस्त
जो हमारे लिए सिंसियरिटी के साथ छोटे छोटे बेर चुन रहा है.
एग्जैक्टली.
जो बिना शोर मचाए हमारे लिए एफर्ट डाल रहा है.
और क्या हम आधुनिक दुनिया की इन बड़ी दावतों और दिखावे में इतने अंधे हो गए हैं कि उस सादगी को पहचान ही नहीं पा रहे?
क्या हम उन झूठे बेरों की कद्र करना भूल गए हैं?
ये सोचने वाली बात है.
लिटरली गूज़बम्स आ गए मुझे. ये बहुत ही गहरा सवाल है.
बिल्कुल. इंतजार करना ही नहीं बल्कि दूसरों की उस शांत मेहनत को पहचानना भी सीखना होगा.
मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ हमें आज लोगों को छोड़ना चाहिए. खुद से पूछिए कि आपकी जिंदगी में वो बेर कौन चुन रहा है. इस बेहतरीन चर्चा के लिए शुक्रिया.
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो.